ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला मंडी हाउस के रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू न करके लोगों के साथ अन्याय किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वसंत कुंज इलाके की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के आरोपी इनामी अपराधी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। और 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
ये लोक अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, जिला उपभोक्ता मंचों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और स्थायी लोक अदालत में होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक अपराध, चेक अनादर मामले, धन वसूली विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल विवाद, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद और यातायात चलान से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवप्रकाश मिश्र।
साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला मंडी हाउस के रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में अलग अलग प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
15 दिसंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की चहल पहल काफी देखी जा रही है। इस मेले में हिंदी, मैथिली, असमिया, डोगरी, बोडो, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेले में साहित्य अकादमी के प्रदर्शक योगेश गुप्ता ने बताया कि उनके पास 24 से अधिक भाषाओं की पुस्तकें हैं।
हमारा साहित्य अकादमी का खुद का भी स्टॉल है जिसमें हम देश की 24 भाषाओं की जो किताबें हैं उनको प्रदर्शित किया हुआ है। ये सभी किताबें सेल के लिए भी उपलब्ध हैं जिनपे 10% का जो है ना डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अच्छे जो है ना ऑडियंस भी आ रही है और जो है ना रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है।
वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक प्रदर्शक ने बताया कि उनके पास संस्कृति, भाषा, कला और मंदिर से संबंधित भी पुस्तकें हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्टॉल है, आप हमारे यहाँ पे आइए। कल्चर से रिलेटेड, अलग अलग भाषाओं से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड अगर आप आएंगे और यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।
पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, युवा साहित्य, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं शामिल हैं। मेले में प्रवेश निशुल्क है और लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मेले में जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बना रही है। आज मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी लाभार्थी योजना को राजधानी में लागू न करके सेवा बस्ती के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलती है।
आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को पैसा देने के लिए तैयार है, द्वेष की राजनीति के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार उसे दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने वसंत कुंज इलाके की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इलाके के पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था के लिए सांसद निधि से भी राशि की व्यवस्था की। भाजपा सांसद ने वसंत विहार की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के साथ बैठक का आयोजन किया जिसमें दिल्ली सरकार, नगर निगम, DDA, जल बोर्ड और BSES के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में RWA प्रतिनिधियों ने खराब सड़कों की खराब हालत, पेयजल की कमी, स्ट्रीट लाइट न जलना और पार्कों की बदहाली के बारे में शिकायत की। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने बताया कि सड़कों की बदहाली के बारे में दिल्ली सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर श्री विधूड़ी ने कहा कि डीडीए से इलाके की टूटी सड़कों की हालत सुधारने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीनों में सभी सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पार्कों में 2 ओपन जिम भी लगाए जा रहे हैं। श्री विधूड़ी ने बैठक में उपस्थित जल बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि इलाके में पेयजल की समस्या को जल्द हल किया जाए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के आरोप में संलिप्त इनामी अपराधी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय युवाओं की अवैध तस्करी करने तथा उन्हें फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर करने तथा साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त था। दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न राज्यों में तैनात थी। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन तकनीकी निगरानी टीम के अथक प्रयासों के बाद आरोपी को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में पाया गया। टीम द्वारा आरोपी को नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया, जब वो किसी अन्य ठिकाने पर भागने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर संचार, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में हुई प्रगति की सराहना की है। श्री मोदी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख के बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। इस लेख का विषय है विकसित भारत के सपने को साकार बनाने में पूर्वोत्तर की भूमिका। प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की भी सराहना की, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेक्सटाइल, पर्यटन के अवसरों और परंपरागत शिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। 3 दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संपन्न हो रहा है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र के 8 राज्यों की सुंदरता, विविधता और संकल्पों को लोगों के साथ साझा करना है। इन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। महोत्सव में 250 से अधिक कारीगर अपने अनूठे शिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों सहित 34 GI टैग उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन का कार्यक्रम डिजिटल अंतराल दूर करने, ऑनलाइन वातावरण में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा। ये सुरक्षित, समावेशी और नैतिक रूप से शासित इंटरनेट की आवश्यकता पर भी बल देगा। कार्यक्रम का विषय भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक अध्ययन के अनुसार UPI ने वंचित समूहों को औपचारिक ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। ओपन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्रेडिट एक्सेस के लिए निहितार्थ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI के लाभ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों को भी इससे लाभ मिल सकता है। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि ऋण वृद्धि के बावजूद डिफॉल्ट दरें नहीं बढ़ी हैं। वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने देश में वित्तीय लेन देन के तौर तरीकों को बदल दिया है। UPI ने लगभग 30 करोड़ लोगों और तकरीबन 5 करोड़ कारोबारियों को डिजिटल लेन देन के लिए सक्षम बनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने आज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रहस्यों पर एक कार्यशाला आयोजित की। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गंभीर नींद से संबंधित श्वास विकार है। ये तब होता है जब व्यक्ति की नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट आती है। ये तब होता है जब गले की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और वायुमार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। इस बीमारी के लक्षणों में दिन में बहुत अधिक नींद आना, जोर से खर्राटे लेना और रात में जागना तथा हांफना शामिल है। पल्मोनरी क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि बहुत कम लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, ये कई बार जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर मोहन ने कहा कि हमारे देश में नींद संबंधी विकार बढ़ रहा है।
स्लीप डिसऑर्डर्स अनरिकग्नाइज्ड है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन ये बीमारी सीरियस भी हो सकती है और धीरे धीरे इसका रिकग्निशन बढ़ रहा है और इसका प्रेवलेंस भी बढ़ रहा है हमारे कंट्री में। जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, जब नॉर्मल आदमी को नहीं आता फिर भी एक्सेसिव नींद आती है, ज्यादा खर्राटे रात को जिसको आते हैं, और अल्टीमेटली आगे जाके हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे, शुगर पे और भी बहुत लाइफस्टाइल डिजीजेस पे इसका असर पड़ता है।
वहीं क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल ने कहा है कि अत्यधिक खर्राटे लेना सामान्य नहीं है और इससे दिल और दिमाग के दौरे की संभावना बढ़ सकती है।
अगर किसी को सप्ताह में दो रातों से ज्यादा खर्राटे आते हैं तो वो एबनॉर्मल है और उसके लिए उसको आगे टेस्ट करने की जरूरत है, बाकी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, वो पूछेंगे उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नींद में क्या क्या दिक्कतें होती है, सोने का समय कितना है, उसके हिसाब से आधारित होता है कि क्या इस मरीज को कोई बीमारी हो सकती है और उसके लिए उसको क्या स्लीप टेस्ट कराने की जरूरत है या और ब्लड टेस्ट या कुछ भी टेस्ट करने की जरूरत है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है। आज शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 313 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कुछ क्षेत्रों में AQI 300 का आंकड़ा पार कर गया है। शादीपुर में 389, आनंद विहार में 381, जहांगीरपुरी में 364, द्वारका सेक्टर 8 में 316, पंजाबी बाग में 338 और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 288 AQI दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक सुबह और शाम के समय स्मॉग और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली में आज कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद राजधानी में सर्दी बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भगवद गीता समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने सभी को भगवद गीता का सार, सकारात्मक सोच और समरसता का संदेश समझने के लिए प्रेरित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला मंडी हाउस के रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू न करके लोगों के साथ अन्याय किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वसंत कुंज इलाके की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के आरोप में संलिप्त इनामी अपराधी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। और 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।